नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, इस अस्पताल में लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में पितृपक्ष मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने अधिकारियों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। लहेरियासराय स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बना अस्पताल 210 बेड और मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल परिसर में बना अस्पताल 220 बेड की क्षमता वाला है। यहाँ अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बदलते दरभंगा की पहचान बनेगा।
सारी व्यवस्थाएं, आज ऑपरेशन थिएटर बने हैं तो जो ऑपरेशन थिएटर दिल्ली के ऑल इंडिया जो मेडिकल कॉलेज में है, वही ऑपरेशन थिएटर अब दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर आज मेडिकल ऑपरेशन थिएटर क्या खुला कार्डियोथोरेसिक के लिए एंडोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सब होने की व्यवस्था अब आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में विराजमान है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दरभंगा के एकनी शोभन में प्रस्तावित एम्स का स्थल निरीक्षण भी किया। इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त 5,400 बिस्तर वाले अस्पताल के विकास के लिए बिहार को सहायता प्रदान कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुँच सकता है। श्री नड्डा आज पटना के खाजे कला में पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाना है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा किसी जाति, धर्म या विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि सबकी और पूरे समाज की पार्टी है।
किसी और पार्टी ने देखा है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष एक साथ खड़े होकर के वह अपनी सदस्यता ग्रहण करता हो, ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी। हम 18 करोड़ की पार्टी है और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से हम ज्यादा हमारे सदस्यता हो चुकी, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
इस अवसर पर श्री नड्डा ने कई लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। राज्य सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन और लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही रेड, येलो और ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए अलग अलग नियम होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन को मार गिराया जा सकता है और संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में पितृपक्ष मेला महासंगम 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए हर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। श्री कुमार ने कहा कि पितृपक्ष मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया आते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा को लेकर व्यापक और बेहतर तैयारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मेले में आने वाले दिव्यांगजन और वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गया में विष्णुपद मंदिर तक वैकल्पिक पहुंच पथ और एकीकृत जल निकासी कार्य का लोकार्पण किया। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष विवेक सिंह ने कहा है कि देश में पहली बार बिहार में बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग की जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि इससे फ्लैट खरीदने वालों को आसानी होगी।
बिल्डर्स और प्रोजेक्ट्स है, दोनों का ग्रेडिंग प्रारंभ किया है। उसका उद्देश्य ये है कि जो आम जो होम बायर है, जो गृह खरीदता है, वो पूरी पूंजी लगाता है और उसको मालूम नहीं रहता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि क्या है, प्रमोटर की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो और लोगों के बीच एक पारदर्शिता आए कि सबसे अच्छे बिल्डर्स कौन है, अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा कहां कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक बहुत यूनिक निकाला है जो अभी पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा है कि हम लोग अभी जो मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं उसमें है कि रेरा को कैसे और प्रभावकारी बनाया जाए।
केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेतकर को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है। उन पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप था। यूपीएससी ने अपनी जांच में आरोप को सही पाया, जिसके बाद पूजा खेतकर की सेवा समाप्त कर दी गई। भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी नैयर हसनैन खान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। वे एसएसबी के आईजी बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नैयर हसनैन खान वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अपर पुलिस महानिदेशक हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 80 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 38 मरीज पटना से हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1006 मामले सामने आ चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी।
डेंगू बुखार जो है, नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो बुखार है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि एक मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है, वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता है, इनफैक्ट जो पैरासिटामोल वगैरह भी हम देते हैं उससे भी बेसलाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है, नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासिटामोल, और ये इंश्योर करना कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए, ये दो सिंपल तरीकों से आप मैक्सिमम मरीज को, डेंगू के मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक कर सकते हैं।
राज्य में एक बार फिर मॉनसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। नवादा के पकड़ी बड़ावा में सबसे अधिक 53.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है।
अगले 4 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। एक या दो स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। तत्पश्चात वर्षा में वृद्धि की संभावना है। पांचवें और छठे दिन दक्षिण बिहार में एक या दो स्थानों पे भारी वर्षा का पूर्वानुमान है एवं सातवें दिन उत्तर बिहार में एक या दो स्थानों पे भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।
देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान कई जगह मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने 5G मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट के खिलाफ चेतावनी दी है। यह फर्जी वेबसाइट बीएसएनएल के नाम पर लोगों के व्यक्तिगत ब्यौरों की मांग कर रही है। तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इस वेबसाइट bsnltowerindia.com लोगों से 5G टावर लगवाने के नाम पर प्रार्थना पत्र मंगवा रही है। पीआईबी ने पाया कि यह बीएसएनएल से जुड़ी नहीं है और इकाई ने ऐसे संदिग्ध वेबसाइट के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने अधिकारियों को जन समस्याओं के तत्काल निराकरण का निर्देश दिया। बिहार एसटीएफ की टीम ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से कुख्यात बालू माफिया और 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी रंजीत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने जाली नोट के कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, इस अस्पताल में लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में पितृपक्ष मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने अधिकारियों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।